हरे कृष्णा। तो मुझसे निवेदन किया गया था कि इस विषय पर मैं चर्चा करूं कि एक आदर्श अनुयायी, आदर्श पत्नी, आदर्श शिष्य, आदर्श कोई भी एक व्यक्ति जो किसी के पथ में चल रहा है, उसका व्यवहार, उसका सोच विचार कैसे होना चाहिए। और प्रसंग यहाँ मंदिर में श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध से चल रहा है। कर्दम मुनि और देवहूति देवी के बीच में संवाद हो रहा है, अध्याय 23 और 24। तो 23वें अध्याय से हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाचा मधुरया च भोः। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाचा मधुरया च भोः। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाचा मधुरया च भोः। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाचा मधुरया च भोः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। ये अनुवाद है। तो विषय यहां ऐसे चल रहा है, प्रसंग ऐसे हो रहा है कि पत्नी के कर्तव्य क्या होने चाहिए, और इससे मैं पतियों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलो पत्नियां अच्छी तरह से सुने, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपकी बारी कल आएगी। उस समय पत्नियां बड़ी खुश हो जाएंगे, उनको समझ लें अभी उनको भी सुनना चाहिए क्या होना चाहिए। इसलिए समय से पहले जो आप में पति हैं, जरा खुश मत होइए, क्योंकि हर सिक्के के दो तरफ होते हैं। तो दोनों को अपने अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। तो कहीं ऐसा ना सोचें कि जब पत्नी के कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो पति बड़े खुश रहें कि भाई केवल पत्नी के ही कर्तव्य हैं, हमारे कोई नहीं हैं। तो दोनों के होते हैं। तो प्रसंग यहाँ कुछ ऐसे चल रहा है, इसलिए मुझसे निवेदन किया गया था कि जो भी अनुयायी होते हैं सर्वसाधारण, तो उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। परंतु यहाँ देवहूति की बात हो रही है, जिस तरह की वो कर्दम मुनि की सेवा कर रहे थे। तो आगे यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहाँ पर विश्रम्भेण तथा गौरवेण ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से विशिष्ट बने रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए। अरे रे रे और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। विश्रम्भेण का अर्थ आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमेन च पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। सहृदयेन वाचा मधुरया का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उसमें मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उसे मीठे वचन बोले। अयोयो बड़ी मुश्किल बात है। सब पारिवारिक संबंध कैसे पत्नी को आदर्श होना चाहिए, पति को आदर्श होना चाहिए, शिष्य को आदर्श होना चाहिए, ब्रह्मचारी को आदर्श होना चाहिए, सन्यासी को आदर्श होना चाहिए। बहुत मुश्किल है इस जगत में। खैर, आदर्श के पीछे ही तो हम सब हैं। कोई यहां दुनिया में स्वतंत्र नहीं है। यहां हम दुनिया में आए हैं स्वतंत्र बनने के लिए, परंतु यह संभव नहीं है। प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हम सब हैं और जब तक यह संसार में रहेंगे और भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम अधीन ही रहेंगे। शुद्ध भक्त होने के बाद भी हम समझ लेते हैं कि हम कभी अधीन स्वतंत्र नहीं हो सकते। हम सीधे भगवान की श्रेष्ठता को, भगवान के भक्तों की श्रेष्ठता को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो चाहे वो पति हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर एक को किसी न किसी के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा ये मनुष्य जीवन नहीं है। आधुनिक सभ्यता का लक्षण, एक लक्षण ये है कि लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के या व्यक्तियों के अधिकार को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को स्वीकार करने में वो अपनी हीनता समझते हैं कि मैंने यदि किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार स्वीकार किया, मैंने यदि किसी के सामने एक निम्न पद स्वीकार किया तो एक बहुत गलत बात है, अपमान कराने वाली बात है, स्वाभिमान के विरुद्ध ऐसे कोई बात है। जब हम एक बार पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो वहाँ मेलबोर्न शहर में हम किसी भक्त के यहाँ जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, सत्संग के लिए। तो गाड़ी बाहर रुकी, बड़ी इमारत थी, उनमें से एक मकान उनका था। तो सड़क पे आए, सड़क पार किया और उनके इमारत में सीढ़ियों से चलते जा रहे थे। वहाँ से वो भक्त आए सामने से और वहीं सड़क पर उन्होंने प्रणाम किया। अब वहाँ से एक वहाँ के स्थानिक व्यक्ति, ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति, सड़क से चलते हुए आ रहे थे। उस व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने ऐसे झुक गया है, तो उनको इतना गुस्सा आया, न जान न पहचान, लेकिन वहाँ खड़े होकर जोर से कहने लगा अंग्रेजी में कि ये आपको ऐसे क्यों कर रहा है। उसको विश्वास नहीं हुआ कि कोई एक मानव किसी दूसरे के सामने ऐसे झुक रहा है, कि क्यों झुकना चाहिए। इतना गुस्सा आया कि वो ऐसे कहने के बाद खुद उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, लेकिन बहुत हट्टा खट्टा हृष्ट पुष्ट था, इसलिए हमने यही सोचा कि तर्क नहीं करना अच्छा है। और हमने ऐसे हंसकर उनको बताया कि ठीक, कुछ हमने समझा दिया उनको, फिर आगे चले। फिर हमने भक्तों से कहा कि देखो, यहाँ देश काल पात्र के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ लोगों की संस्कृति ऐसी है, इनकी सभ्यता ऐसी है, तो बाहर के लोगों के सामने ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रणाम करना भी है, ठीक है, वेद शास्त्र में बताया जाता है भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, परंतु परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरह से अभी ऐसे प्राय नियम हो गया है कि जैसे विदेशों में हवाई अड्डे में जब भक्त लोग किसी भक्त का स्वागत करने आते हैं या जब वो भक्त जा रहे होते हैं, तो उस समय हवाई अड्डे पर अन्य भक्त लोगों को पूरा दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल हाथ जोड़ के या मन में प्रणाम कर लेना चाहिए। नहीं तो अन्य लोग जो हैं सोचते हैं कि ये लोग क्या है, ये लोग कोई पता नहीं क्या है, इनका कोई स्वाभिमान नहीं है, कुछ नहीं है, किस तरह का धर्म इनका है। और ऐसे कई संस्थाएं हुए हैं जहां पर लोगों का बहुत शोषण हुआ है, बच्चों का, स्त्रियों का, पुरुषों का भी। इसलिए ऐसे संशय की दृष्टि से सब देखते हैं, घृणात्मक दृष्टि से देखते हैं। तो अभी आधुनिक सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती जाती है और पाश्चात्य देशों के उसूल जैसे ज्यादा से ज्यादा फैलते जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अधिकारियों के प्रति जो सम्मान है, एक श्रद्धा है, एक आज्ञाकारी भाव है, उसका घटन होते जा रहा है। कोई भी दूसरे व्यक्ति की बात मानना नहीं चाहता है, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि आजकल ऐसे भी नियम आ गए हैं कि अब बच्चों को भी डांट नहीं सकते। नहीं तो ये कानून है, ये गुनाह है। भारत से एक बार एक महिला गई थी अपने बेटी को मिलने अमेरिका में। उनकी बेटी वहाँ कई वर्षों से रह रही थी, वहाँ विवाह हो चुका था, और उनकी एक लड़की थी। तो लड़की करीब 10-12 साल की हुई होगी। तो जब ये महिला भारत से वहाँ गई तो उनकी बेटी और उनके दामाद दोनों अपने अपने नौकरी पर गए हुए थे। तो ये महिला अपने घर में अकेले थी, उनके घर में, और फिर अपने पाठशाला से छोटी लड़की चली आई घर। तो वहाँ आई तो कुछ किया होगा लड़की ने इधर उधर कुछ घर में, और ये तो है नानी, भारतीय नानी, तो डांटेगी ना, और क्या करेगी, डांटेगी। तो बच्ची को डांट लिया कुछ, तुमने ऐसे क्यों किया, ये कुछ कह दिया होगा। तो सीधे बच्ची ने जाके पुलिस में फोन लगाया, पुलिस आ गए और बेचारे नानी को जेल में भर्ती कर दिया। अब ये सब आए बाद में फोन करके, सारे वो छुट्टी लेके अपने दफ्तर से आए, भागे दौड़े, क्या हो गया क्या हो गया। बड़े मुश्किल से उनको जेल से छुटकारा दिलाया। फिर वो महिला ने कहा, पहले जो फ्लाइट निकल रही है यहां से उसमें बिठाओ हमको, अब और एक क्षण भी तुम्हारे यहां हम नहीं रहना चाहते इस देश में। तो आजकल ऐसे है। एक माता जी हमें बता रही थी वृंदावन में, यह भी सच बात है कि बच्चों के खिलाफ भी शोषण वगैरह बहुत हुआ है, ये भी सही बात है, इसलिए ऐसे कानून वगैरह आ गए हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आजकल बाहर समाज में भी हम समाचार पत्र में कितना कुछ सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों के प्रति भी बलात्कार के कार्य आदि होते हैं, तो ये भी सही है। परंतु इसका प्रतिकार एक इतने हमने कठोर रूप से किया है कि हम सबको पूरी स्वतंत्रता देना चाहते हैं। तो वो माता जी बता रही थी कि एक बार उन्होंने अपने बच्चे को कुछ डांटा, बच्चे ने कुछ किया था, तो बच्चा कहने लगा, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी को जाके शिकायत करूंगा। और वो माता जी स्वयं चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी में थी। अच्छा, तो मुझे सिखा रहे हो। तो हालत ऐसी हो गई है आजकल कलयुग में, वातावरण कुछ ऐसे हुआ है कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनना नहीं चाहता। शिष्य गुरु की बात सुनने नहीं चाहते, विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात सुनना नहीं चाहते, राज्य की जो प्रजा है वो अपने नेता की बात सुनना नहीं चाहते। घर में भी ऐसे वातावरण, पति पत्नी के बीच में फिर ऐसे वाद होते रहते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। तो ये कलयुग का एक प्रभाव है। हाँ, तो हमने वृंदावन में क्या किया था पता है? एक बार हमने सबसे कहा था मोबाइल फोन नहीं बजने चाहिए, जिनके मोबाइल फोन बजेंगे उनको 500 रुपए गौशाला में दान देना होगा। और हम जानते थे कि कोई ना किसी का फोन बजेगा, इसलिए हमने गौशाला के देखने वाले भक्त को बोला, आपको आज थोड़ा अच्छा कुछ डोनेशन मिलने वाला है, आप आइए यहाँ पे आज क्लास में हमारे साथ में बैठिए। तो निश्चित ही सूचना देने के बाद भी कई फोन बजे ही, तो सबके सामने उनको, चलो उनसे ले लो 500 रुपए, उनसे 500 रुपए। तो थोड़ी बहुत गाय सेवा हो गई उधर, गौ सेवा हो गई। देखो प्रवचन में कहने के बाद भी जो प्रवक्ता कहते हैं नहीं कर, फिर भी नहीं मानते, क्या कहें। तो कुछ वातावरण ही, कुछ माहौल ही कुछ ऐसा है, अब क्या करें। और जो अधिकारी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने अधिकार का या अपने पद का दुरुपयोग किया है, ये भी सही है। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि अन्य लोग अधिकारियों में श्रद्धा नहीं रख रहे हैं आजकल। तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए। तो पहले जो एक नियम हुआ करता था या एक संस्कृति जो हुआ करती थी पहले, वो आज नहीं है। स्वतंत्रता और पाश्चात्य और भौतिकतावादी विचारों के अनुसार आजकल लोगों के घर घर में, समाज में व्यवहार बहुत बदल चुके हैं। तो खैर, यहाँ बात चल रही है पत्नी और पति की। तो पत्नी और पति के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, यहाँ बताया गया, विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हैं, विश्रम्भेण, और दूसरा शब्द है गौरवेण। विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता, बहुत निकटता से, मैत्री भाव से, पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, परंतु साथ साथ गौरवेण सम्मान के साथ रहना चाहिए। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय के कारण अवज्ञा या अनादर नहीं होना चाहिए। यह स्वाभाविक है, हम बहुत ज्यादा किसी के साथ में रहते हैं तो उनको कोई त्रुटियां देखते हैं, उनके साधारण मनुष्यता को देखते हैं। आखिर हम में से सब लोग तो मनुष्य हैं ही, परंतु सम्मान की भावना बनी रहनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए। दमेन च इंद्रियों को वश में करके शुश्रूषया सहृदयेन, बड़े प्रेम से सेवा करनी चाहिए। वाचा मधुर याच भोः, मधुर वाणी से बात करनी चाहिए। तो ऐसे शास्त्र में जगह जगह, ये तो बहुत लंबा विषय है, एक प्रवचन में इस विषय की चर्चा पूरी तरह से करना तो संभव नहीं है, परंतु आजकल ऐसे विषय जो हैं लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि बाहर के समाज में सबों में अहंकार इतना बढ़ गया है कि कोई ऐसे विषय सुनना नहीं चाहते। एक के बारे में कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे क्यों करना चाहिए, अब एकता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, ये एक मिथ्या बात है, ये ऊंच नीच की बात नहीं है। केवल बात यह है कि भगवान ने कुछ सृष्टि की रचना इस तरह से की है, और दुनिया में लोगों को या शरीरों को, मन को, वृत्तियों को इस तरह बनाया है, और उनके लिए एक योजना भी की है भगवान ने, उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, शांत रहेगा, प्रेम से लोग आपस में संबंध रख पाएंगे। भगवान की योजना के अनुसार हम नहीं जाएंगे तो उपद्रव हो जाएगा समाज में, भेद हो जाएगा, लोगों में झगड़ा होने लगेगा। इसलिए यहां बताया गया है कि बड़े प्रेम से सेवा होनी चाहिए। अगले श्लोक में वो कहते हैं विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम। विसृज्य मतलब त्याग देना चाहिए, कामम काम त्यागना चाहिए, दंभम दंभम अर्थात अहंकार। देवहूति देवी एक बड़े राजा की पुत्री थी, स्वयंभुव मनु, और तरह तरह के राज की ऐश्वर्यों के आदि थी, और कर्दम मुनि दूसरी ओर वन में रहने वाले एक ऋषि थे। उनके पास कोई धन नहीं था, कोई घर भी नहीं था, फिर भी उनके साथ में रहीं। यहां इसी अध्याय के पहले श्लोक में ही वो कहती हैं नित्यम पर्यचर्यात् प्रीत्या भवानीव भवम प्रभुम। जिस तरह से भवानी अर्थात दुर्गा भव अर्थात शिवजी की सेवा करती हैं, वैसे देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की। अब भवानी और भव का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है, भव अर्थात शिवजी और भवानी अर्थात दुर्गा। दुर्गा देवी स्वयं माया देवी हैं, और वो तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, तरह तरह के आशीर्वाद देकर भौतिकतावादी लोगों को धन देती हैं। तो यहां के ऐश्वर्य और भोग के लिए वो जिम्मेदार हैं, लोगों को बंधन में रखती हैं। तो उनके पास भौतिक जगत के सारे ऐश्वर्य आदि की सुविधाएं सब हैं, परंतु उनके पति शिवजी के पास कुछ नहीं है, एक मकान भी नहीं है, किराए का भी नहीं, और वो केवल पेड़ के नीचे रहते हैं। लेकिन भवानी शिकायत नहीं करती, मेरे वजह से, मेरे आशीर्वाद की वजह से सबको महल मिल रहे हैं पृथ्वी लोक में इधर उधर, लेकिन मैं एक पेड़ के नीचे रहती हूँ, मेरे पास एक कुटिया भी नहीं है। भवानी कभी ऐसे नहीं कहती हैं, अपने पति के साथ बड़े आनंद से रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। शिवजी उधर एक वैरागी हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, सेवा में रहते हैं भगवान के। तो वैसे ही शास्त्र बताया गया है कि पत्नी को चाहिए कि अपने पति की जैसे भी परिस्थिति हो उसमें बड़े खुशी से रहे। पति के पास धन कम हो तो वही सही, कोई बात नहीं। पति का स्वभाव कुछ एक प्रकार का हो तो ठीक है, वही सही। जैसे हमने पहले कहा, पति को कैसे होना चाहिए इसकी चर्चा कल करेंगे, परंतु आज पति पत्नी की चर्चा हो रही है। तो पत्नी को चाहिए कि अपने पति के साथ साथ रहें वो, और जैसे पत्नी का पति का भाव है, पति का स्वभाव है, पति की परिस्थिति है, उसको सोच समझ के उनके साथ साथ सहयोग से काम बढ़ाए, फिर शांति हो सकती है। वैसे पति और पत्नी के बीच में संबंध सेवा के द्वारा होता है। कई बार आजकल ये देखा जाता है कि एक दूसरे को वश में करने के लिए दोनों प्रयत्न करते हैं और वाद विवाद बहुत हो जाते हैं, और वाद विवाद करते करते तापमान बहुत बढ़ जाता है, फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है, फिर कुछ किया नहीं जा सकता उसके बाद। भगवान स्वतः कहते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो भक्तों के ऊपर निर्भर होते हैं। हालांकि भगवान स्वतंत्र हैं, फिर भी भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं। दुर्वासा मुनि को भागवत के 9वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर् ग्रस्त हृदयो भक्तिर् भक्त जन प्रिय। मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं हे दुर्वासा मुनि। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज हे ब्राह्मण, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अस्वतंत्र हूं। मेरे भक्तों ने, जो साधु हैं, उन्होंने मुझे अपने हृदय में वश करके रखा हुआ है। भक्तेर भक्त जनप्रिय, इसलिए जो भक्त हैं मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं, और जो भक्तों के भक्त हैं वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं। तो मेरे भक्तों ने मुझे वश में करके रखा है। वशे कुर्वंती मद भक्त्या सत स्त्रियः सत्पतिम यथा। तो मेरे भक्तों ने मुझे इस प्रकार से वश में करके रखा है जैसे एक सत स्त्री अपने पति को वश में करती है सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा। तो इस तरह से पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। तो इसलिए पति जो होते हैं वो पत्नी के वश में होते हैं, परंतु सेवा के द्वारा, तर्क गर्मी झगड़े के द्वारा नहीं। तो ऐसे यदि एक भाव रहे तो समाज में बहुत शांति रहेगी। परंतु आजकल दंभेण, विसृज्य दंभेण होना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि अपने दंभ को, अपने अहंकार को त्यागे। परंतु आधुनिक काल में ऐसे नहीं देखा जाता, क्योंकि आजकल पत्नियां भी धन कमाने के लिए बाहर जाती हैं, व्यवसाय करती हैं, नौकरी करती हैं, और फिर पति पत्नी के बीच में धन के बारे में चर्चा होती है, झगड़े होते हैं, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, मैं इतना कमा रही हूँ तुम इतना कमा रहे हो। तो अपने शिक्षण का गौरव, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरे पास इतना धन है, मैं भी कुछ कमा सकती हूँ। तो ऐसे फिर बीच में टक्कर हो जाता है, सारी परिवार की शांति नष्ट हो जाती है। तो सच्ची पत्नी, सही पत्नी वो है जो समझदार होकर अपने पत्नी के भाव को समझे और साथ साथ आगे चले। नारद मुनि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में एक पतिव्रता स्त्री के 4 लक्षण बताते हैं। एक है कि वो अपने पत्नी अपने पति की सेवा करे। दूसरे कि अपने पति के प्रति अनुकूल भाव रखे। तीसरा कि अपने पति के जो मित्र हैं और रिश्तेदार हैं उनके प्रति भी अनुकूल भाव रखे। और चौथी बात है कि पति के जो व्रत हैं उसका भी पालन वो करे। पति जिस सिद्धांतों के अनुसार जी रहा है, धार्मिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार पत्नी को भी रहना चाहिए। यदि ऐसी पत्नी रहेगी तो वह पतिव्रता स्त्री मानी जाती है और ऐसे पतिव्रता स्त्री को बहुत शक्ति प्राप्त होती है। जो शक्ति एक पतिव्रता स्त्री को मिल सकती है वो हमारे तुलना के, हमारे कल्पना के बाहर है। जैसे गांधारी देवी इतनी पतिव्रता स्त्री मानी जाती हैं कि उनको ऐसी शक्ति मिली कि वो श्री कृष्ण को श्राप दे पाएं। श्री कृष्ण, बल्कि कौन श्री कृष्ण को श्राप दे सकता है, परंतु श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि ये इतने पतिव्रता स्त्री हैं, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह से मेरे आंखों के सामने मेरे वंश का नाश हुआ, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे वंश का नाश होगा। इसलिए आगे चल के आपस में यदुओं ने युद्ध किया और यदुवंश समाप्त हो गया। तो कोई भी अनुयायी जो होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जिनका अनुगमन वो करते हैं उनके भाव को अच्छी तरह से समझ के, उनकी इच्छाओं को समझ के आगे चले। और जो भी पति भक्ति करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, अपने आप ही केवल पति की सेवा करके पत्नी को उनका लाभ मिल जाता है। देवहूति को भी कर्दम मुनि के तपस्या और भक्ति का पूरा पूरा फायदा मिल गया, क्योंकि देवहूति कर्दम मुनि की सेवा इतनी अच्छी तरह से कर रही थी। जब अनुयायी और शिष्य की बात आती है, क्यों, गुरु तो, पति तो एक प्रकार के शिक्षा गुरु माने जाते हैं पत्नी के लिए, और पत्नी के अलावा और जब हम अनुयायियों की बात करते हैं, हमें जानना चाहिए कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक अनुयायी है। किसी न किसी का अनुगमन तो हमें करना ही करना है, अन्यथा हम मनुष्य नहीं है। तो जब हम अनुगमन करने की बात करते हैं, अनुयायी बनने की बात करते हैं, केवल पत्नी की बात नहीं है, हम में से हर एक को करना चाहिए और बुद्धिमानी से करना चाहिए। जिनका अनुगमन हम कर रहे हैं उनका भाव समझना चाहिए। एक बार हुआ यह कि एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। गुरु वृद्ध थे तो एक घोड़े के ऊपर बैठे थे, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, और घोड़े पे काफ़ी सामान वगैरह भी रखा हुआ था, और उनका शिष्य जो है उनके साथ साथ पैदल जा रहा था। अब अचानक घोड़े के ऊपर जो सामान रखा था गुरु का, उसमें से एक कोई सामान नीचे गिर गया, जो बोतल वगैरह थे वो नीचे गिर गई। तो शिष्य ने उठाया नहीं, आगे चलते रहे दोनों। तो गुरु ने कहा, अरे उठाओ ना, गिर गया, देखो। जय गुरु महाराज की जय हो, मैं पूरी तरह से समर्पित हूं गुरु महाराज के, जो आपके आदेश का पालन होगा। तुरंत उठा लिया, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं था कि पहले कि बोतल गिर जाए तो उठाओ, इसलिए मैंने पालन नहीं किया, मैंने उठाया नहीं, लेकिन अब आप जब ने कहा अवश्य मैं उठाऊंगा। तो आगे चले और दूसरा कोई सामान गिर गया, तो आगे चलते रहे गुरु, अरे गिर गया, देखो उठाओ तो सही। गुरु महाराज की जय हो, आपके लिए हमारा प्राण हम त्यागने के लिए तैयार हैं। तो ये छोटी चीज उठाने के लिए क्या बात है, क्या मुश्किल है। तो उठा लिया, रख लिया। तो ऐसे जब थोड़ी चीजें ऐसे गिरते गई तो गुरु ने कहा, भाई हर चीज मुझे बतानी होगी। तो कहा, जो आपका आदेश हो आप बताइए, बिल्कुल मैं वैसे का वैसे करूंगा। तो गुरु हैरान हो गए, कहा ठीक है लिखो, यहां कौन सी चीजें हैं, घोड़े पे क्या क्या सामान है, यहां बताओ। तो एक के बाद एक वो लिख लिया उन्होंने, देखो बोतल गिर जाए, मेरा कंबल गिर जाए, मेरा ये गिर जाए, वो गिर जाए, इसमें से कोई भी वस्तु गिरे ना, देखो तो उसको उठा लेना। गुरु महाराज की जय हो, अवश्य करेंगे ऐसे, हमारा आत्मसमर्पण संपूर्ण है। और आगे चलते चलते गए और घोड़े के पता नहीं कुछ हुआ, घोड़ा उछल गया, बेचारे गुरु घोड़े से गिर के नीचे गिर पड़े। और आगे चलते गए तो गुरु बेचारे लेटे हुए थे जमीन के ऊपर और शिष्य घोड़े को लेकर आगे जा रहे हैं। अरे मूर्ख, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं गिरा हूं नीचे, मुझे उठाओगे नहीं? तो शिष्य ने, गुरु महाराज आपकी लिस्ट में आपका नाम नहीं था। तो गुरु महाराज की जय हो, अभी आपका आदेश मिला, हम अवश्य आपको उठाएंगे। तो उनको उठाया। अरे कितना मूर्ख शिष्य है, ये क्या करेंगे? तो ठीक है, देखो शिष्य ऐसे करो, जो भी गिरेगा घोड़े से उसको उठा लेना। तो फिर से बिठाया और चलते गए दोनों, गुरु और शिष्य। और फिर आगे चल के अपने घोड़े ने विष्ठा त्याग किया तो उन्हें उठाने गए। अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर, आपने कहा था जो भी गिरेगा वो उठाना, तब उठा रहे जा रहे हैं। तो ऐसे अनुयायी जो होते हैं उनको भी बुद्धिमान होना चाहिए, इस शिष्य की तरह नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे अनुगमन करना चाहिए, किस तरह का अनुयायी बनना चाहिए। सच्चे अनुगामी तो वो होते हैं जो जिनको आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जान लेते हैं कि हमारे अधिकारी व्यक्ति का भाव क्या है, हमारे गुरु का भाव क्या है, हमारे अध्यापक का भाव क्या है, माता पिता का भाव क्या है, वो वैसे करते हैं। दूसरे श्रेणी के वो होते हैं जिनको आदेश देना पड़ता है फिर वो करते हैं। तीसरे श्रेणी के वो होते हैं, आदेश दिया जाता है परंतु बड़े संकोच से करते हैं, गुर 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 करते हुए करते हैं। और चौथे श्रेणी को वो होते हैं जो पालन ही नहीं करते हैं। तो यहां दुनिया में अनुयायी बनना ये मुश्किल है, इसलिए हमें बीच में अहंकार नहीं लाना चाहिए। जहां अहंकार आया, दंभ आया, वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। तो विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब 9:40 10:45 बजने को आए हैं, तो यहां प्रश्नोत्तर के लिए थोड़ा समय छोड़ना है, ऐसे निवेदन था। तो संक्षेप में इतना ही कहें कि दुनिया में हम सब अनुयायी होते हैं और यह बीच में हमें अहंकार नहीं लाना चाहिए। जितना हम वैदिक सभ्यता के अनुसार, भगवान के आदेशों के अनुसार आगे चलेंगे उतना हमें अच्छा होगा, किसी भी जीवन के क्षेत्र में, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर क्यों ना हो, गृहस्थ आश्रम के क्यों ना हो, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, समाज में, किसी भी परिस्थिति में, ये एक सिद्धांत सब जगह पाया जाता है। हरे कृष्णा, वास्तव में सत्य बताएं तो ऐसे विषयों पे हमारे उतना उत्साह नहीं होता चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी प्रसंग ऐसे चल रहा है और कई कई बार ये चीजें जानने के लिए भी आवश्यक होती हैं, क्योंकि हमारे दर्शन इतने ऊंचा है लेकिन व्यवहार में हमारा गड़बड़ हो जाता है। हमारे व्यवहार में और हमारे दर्शन में, कृष्ण भावना में इतना बड़ा अंतर है, हमारी बातचीत यहाँ होती है और व्यवहार यहाँ होता है, तो जगह जगह समस्याएं होती हैं। इसलिए इस अंतर को कम करना चाहिए, विचार कम करके नहीं, व्यवहार ऊपर करके। हाँ, कोई प्रश्न है, कोई माइक है? हाँ, हरे कृष्णा।
हरे को किसी ना किसी के अंदर में रहना होता है, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई मास्टर होता है, लेकिन हमारे अंदर जनरली ऐसा, मेरे अंदर ऐसा प्रवृत्ति होती है, मेरे फॉलोअर मेरे से अच्छी तरह सुने लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता, तो ये जो प्रवृत्ति है इसको कैसे निकालना चाहिए? हमारे जो हमारे साथ जो भक्त रहते हैं उन्होंने सुनना चाहिए, लेकिन हम किसका पूरी तरह से नहीं सुनते, तो ये जो प्रवृत्ति है उसको कैसे निकालें?
जैसे करनी वैसे भरनी। हम किसी की बात नहीं मानेंगे तो हमारे नीचे वो हमारी बात नहीं मानेंगे, ये साफ है। आदर्श नेता वो होता है जो आदर्श अनुयायी होता है। हम किसी का अनुगमन नहीं करेंगे, किसी के अनुयायी नहीं बनेंगे, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई हमारे पद चिन्हों में चलेगा? तो करना चाहिए। ऐसे हम करेंगे तो आगे हम नहीं कर पाएंगे जो हमारे अधीन है या जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जल्दी से वो जान लेंगे, फिर वो हमारी बात नहीं मानेंगे, फिर हमको बहुत बुरा लगेगा, अरे हमारी बात नहीं मान रहे। हरे कृष्णा। हाँ माइक वहां, ठीक है माइक आएगा, फिर बाद में वहां दीजिए, वहां पीछे माइक। आजकल का विषय बड़ा नाजुक है, मैं सोच रहा हूं कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, थोड़ा सोच के भी। हाँ जी
Vedic perspective, a woman follows the vows of the husband. So generally we see in a Vedic tradition, women did not have their own set of vows. Like we see here Devahuti, her main sadhana is in assisting Kardama Muni's sadhana and everything. This was about the Vedic tradition in general. And even in the modern Hindu society, you know, the yajna, sacrifice, everything is done by the man. The woman kind of generally, you know, she assists him. Many times she just stands behind him with the grass or something, you know, holding that way. But in our ISKCON society, we see that women have to follow their own set of vows. You know, like they have a sadhana requirement, the chant 16 rounds, they're second initiated, they have to chant Gayatri, they have to do all these things. And also in our ISKCON society, there is a lot of expectation from women in terms of you know, they have to do service. Like they are supposed to come to temple, cook, you know, do garlands. You know, that requirement is there. It has to be done. So sometimes two people face problem in this. One is the women themselves, because they have, you know, they have to follow all their traditional rules, you know, of being subservient, of serving the in-laws, serving the parents, you know, serving the husband. They have to do all the traditional rules. And they have to also follow the ISKCON set of, you know, I mean, in our society, the protocols that we have in terms of sadhana service requirement. So, one is they get kind of told a little bit, many times, because they ask such questions. And even sometimes the men, they face a problem as to when they have to, you know, tell their wives or tell other women in general, they are wondering where to, that means, where is a woman supposed to sacrifice? In terms of the traditional role, or in terms of, you know, outreach and coming and, you know, doing things like that. So, could you just throw some light on these?
बड़ा गहरा प्रश्न है। हम घबराते हैं ऐसे विषयों में बात करने में। न जाने किससे कहां जाके डांट मिल जाए बाद में। इनका प्रश्न ये था कि वैसे प्राचीन काल में, वैदिक काल में स्त्रियों के अलग कोई व्रत आदि नहीं हुआ करते थे। पति के जो व्रत थे वो स्त्री के व्रत हो जाते थे, पति की सहायता करके उन व्रतों का पालन अपने आप वो कर लेती थी। लेकिन आजकल और विशेष करके हमारे संस्था में जैसे हम देखते हैं कि स्त्रियों के अपने निजी भी व्रत होते हैं, जैसे उनको 16 माला जप करना होता है, कम से कम 4 नियमों का पालन करना, उनको गायत्री, यदि दूसरी दीक्षा हो गई हो तो गायत्री मंत्र आदि का जप करना, मंदिर में सेवाएं होती हैं उनके लिए भी आना होता है, और दूसरी ओर पारंपरिक जो कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी घर में निभाने पड़ते हैं, मंदिर की सेवाएँ भी करनी होती हैं, तो कर्में कभी कभी इनमें विरोधाभास सा हो जाता है या टक्कर हो जाता है, तो कैसे करना चाहिए, कैसे ये संतुलन करना चाहिए, समन्वय दोनों का कैसे करना चाहिए? यस, दैट्स योर क्वेश्चन। समन्वय इस तरह से किया जा सकता है यदि हम जानें कि दोनों में, दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों कोई हमारे जीवन के अलग अलग विभाग नहीं है। ऐसा नहीं कि एक और मुझे ऐसा करना है क्योंकि इसके उद्देश्य कुछ और ही हैं और ये दूसरा मेरा जीवन का विभाग है जिसके कोई और ही उद्देश्य हैं। जीवन एक संपूर्ण है, एक चीज हमें माननी चाहिए। उस ऐसे जीवन में हमारे कई कर्तव्य होते हैं। मंदिर में आने के बाद भी ये भक्ति के जीवन में भी हमारे कितने कर्तव्य होते हैं, हमें हमारी साधना करनी होती है, फिर सेवाएं भी होती हैं और साधना भी तरह तरह की होती है। आरती में आना होता है, कीर्तन में शामिल होना होता है, जप करना होता है, क्लास में बैठना होता है, अपनी किताबों को पढ़ना होता है। तो इन सब में कभी कभी हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव होते हैं। कभी जप करते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई करते हैं तो सेवा नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं। तो भक्ति के क्षेत्र में भी, हमारी साधना के क्षेत्र में भी ऐसे देखा जाता है। तो हमारे पारिवारिक कर्तव्यों को भी हमें हमारे कर्तव्य समझकर, भक्ति का अंग समझकर आगे करना चाहिए, क्योंकि इनको नहीं संभालेंगे तो हमारे भक्ति में फिर बहुत बाधा पड़ जाएगी। तो दोनों को संतुलित करके आगे बढ़ना चाहिए। हम ये कैसे करेंगे ये हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर है। अपनी बुद्धि को चला के हमें दोनों का समन्वय संतुलन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक बार एक माताजी भक्त को लिखा था पत्र, जिसमें कि उन्होंने पूछा था कि मंदिर में मैं इतनी सेवा करती हूँ परंतु अब मैं घर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उस पत्र का उत्तर इस प्रकार से दिया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि तुम्हें मंदिर के सेवाओं को त्यागना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि घर के प्रति तुम्हारी लापरवाही न हो। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दोनों करो, लेकिन यदि कोई घर में असंतुलन हो, घर में कोई समस्या हो, कहीं कुछ ध्यान अधिक चाहिए, तो उस समय के लिए भले मंदिर की सेवा थोड़ी कम हो कोई बात नहीं, लेकिन घर पर ध्यान दो ताकि सब कुछ वहां ठीक ठाक रहे। हो सकता है पहले जितनी सेवा हम करते थे हम नहीं कर पा रहे हों, स्वाभाविक है, लेकिन परिस्थिति बदलती रहती है, बदलती परिस्थिति के अनुसार हमें चलना पड़ता है। जब हम बच्चे थे तो एक तरह की स्वतंत्रता हमारे अंदर थी, हम कुछ भी कर सकते थे। फिर जब विद्यार्थी होते हैं जिम्मेदारियां कुछ और हो जाती हैं, या फिर नौकरी आदि गृहस्थ हो जाते हैं फिर जिम्मेदारियां कुछ और होने लगती हैं। तो ठीक, जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो फिर जिम्मेदारियों को देखना चाहिए अच्छी तरह से। इनको ठीक से नहीं देखने से फिर वाद विवाद होने लगता है, अशांति हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आध्यात्मिकता और भक्ति के नाम पे हम कठोर हो जाएं, हम लापरवाही हो जाएं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि भक्ति के नाम पर हम हमारे मानवता को भी, अपने मानविकता को भी भूल जाते हैं। किसी से कठोर बात कर मुझे जप करना है या मुझे पढ़ना है तो घर में लोगों से कुछ कठोर कटु वचन कह दिए, जरूरत नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिकता और भक्ति ये तो हमारा उद्देश्य अवश्य है, परंतु हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इसके अंतर्गत आती हैं, इनको भिन्न नहीं समझना चाहिए। जैसे भी बच्चे हैं घर में तो बच्चों का देखभाल करना ये तो कर्तव्य है ही, ये भी एक भक्ति की सेवा है, क्योंकि उनको हम अच्छा भक्त बनाना चाहते हैं। बच्चों को उनका देखभाल करना चाहिए हर दृष्टि से। ऐसे तो कई प्रभुपाद जी की बातें हैं, खैर ये विषय तो बहुत लंबा है। बट यू हैव गॉट एन आंसर, यू वाज एबल टू आंसर।
In the Vedic tradition, what was the reason that the woman, I mean, is it right to understand that in the Vedic tradition, women were not prescribed a sadhana, you know, on their own, like, or it is not like that? Because generally we see that, you know, in the Vedic tradition, like in this story also we see, you know, the man did everything and the woman got like 50% of the share or whatever, something, means she gets the merits of everything automatically. But you know, in the Vaishnava tradition in general, at least in our society, we see that the women have to do it on their own also. So, you know, what was the reason why it was not so much that way, or is it that my understanding is not?
प्रश्न ये है कि ऐसे क्यों था कि वैदिक सभ्यता में प्राचीन काल में स्त्रियों के लिए अलग कोई ऐसे व्रत आदि नहीं हुआ करते थे, आजकल ऐसे है तो ऐसे क्यों? हाँ, ये सही बात है, वैदिक काल में अलग से कोई साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पति की सेवा करने से, पति धार्मिक हैं, अच्छे भक्त हैं कर्दम मुनि जैसे, तो फिर पत्नी को अपने आप लाभ मिल जाता था। क्योंकि इस जमाने में सभी लोग कर्दम मुनि जैसे नहीं हो सकते, इसलिए पत्नियों को अपने लिए भी कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि जो मूल बातें हैं वो हम भूल जाएं। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में एक जगह इसी स्कंद में कहीं, तो वो कहते हैं पति कर्दम मुनि की तरह भी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को पति के प्रति सम्मान से व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप कर्दम मुनि नहीं हो। वो कलयुग में कहां से कर्दम मुनि आएंगे। और आधुनिक काल में सबके विचार अलग अलग होते जा रही हैं, और आजकल जो परिवर्तन होते जा रहे लोगों के सोच विचार में, वो ऐसे है कुछ कि अंततः हमें लोगों को साथ में ले जाना है। किसी न किसी न के न प्रकार न मन है कृष्ण निवेश है, किसी न किसी तरह से उनको भक्ति में लाना है, उनको कृष्ण की ओर आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन करने से भी यदि वो प्रेरित हो जाए, उनको खींच लिया जाए भक्ति में, तो वो ठीक है, यही उद्देश्य है। वैसे वैदिक सभ्यता में महिलाएं गायत्री का जप नहीं करती थीं, गौड़ीय परंपरा में भी नहीं करती थीं, श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में भी नहीं करती थीं। केवल हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने उसको शुरू किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि समाज में, अब विशेष करके पश्चिम देशों में, ऐसी दशा है कि ऐसे नहीं करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे कि स्त्रियों का शोषण हो रहा है या ऐसे। इसलिए फिर उन्होंने कहा ठीक है, चलो अब परिस्थिति के हिसाब से दे दें, ताकि महिलाएं भी प्रेरित हो जाएं भक्ति करने के लिए। अंततः प्रभुपाद जी के मन में क्या विचार था, ये न केरम प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। आजकल समाज का पतन इतना गहरा हो गया है कि किसी न किसी तरह ऐसे रास्ता ढूंढ निकालना है जिससे कि लोगों को भक्ति में लाया जाए। परंतु जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वो केवल श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़े जो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ठीक है, इतने सारे प्रश्न हैं, देखते हैं। अच्छा, एक माता जी ने प्रश्न लिखा होगा कि मेरे पति और पति के जो परिवार हैं वो मेरे कृष्ण भावनामृत में आने में बहुत विरोध करते हैं, तो मुझे कृष्ण भावनामृत का पालन कैसे करना चाहिए? बड़े बुद्धिमानी से करना चाहिए, ना घर वालों को बहुत विचलित करना चाहिए, धीमे धीमे से जैसे हम कर सकते हैं वैसे करना चाहिए, ताकि लोग विचलित न हो। प्रसाद खिलाकर अपने व्यवहार से थोड़ा उनको संतुष्ट करके, भक्तों को बुलाकर, भक्तों के द्वारा उनको समझा समझा के, ऐसे भले थोड़ा समय लगे, थोड़े बुद्धिमानी से काम लेकर करना चाहिए। एकदम से घर में टक्कर नहीं लेना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। और एक प्रश्न है कि क्या एक पत्नी भगवान के धाम में जा सकती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं कि उसे मुक्ति मिल सकती है परंतु इस देह में वो भगवान के धाम में नहीं जा सकती। ये सही है कि वो इस स्त्री देह में भगवान के धाम में नहीं जा सकती, परंतु यह भी सही है कि इस पुरुष देह में भी कोई भगवान के धाम में नहीं जा सकता। भगवान के धाम में जाने के लिए तो आध्यात्मिक देह चाहिए। तो यदि स्त्री हो या पुरुष हो, शुद्ध भक्त बन जाए तो आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, तो उस आध्यात्मिक शरीर में लौट के जाएंगे भगवान के धाम में। तो हाँ, एक प्रश्न है, ये ऐसे मौका होता है ना कि किसी को नाम पता नहीं चलता है, कौन पूछ रहा है क्या है, तो अपने जो भी समस्या है सब अभी पूछ डालना अच्छा रहता है, ताकि कोई समस्या ना हो। अच्छा है, अच्छा मौका है। तो यहाँ प्रश्न है कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच में मतभेद है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो होता है। जिस तरह गौर निताय विग्रह हमारे घर में हैं, उनका उनकी आराधना कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में मतभेद है। तो क्या आप बता सकते हैं कि घर में गौर निताय के विग्रह की सेवा कैसे की जानी चाहिए? जितना आपके लिए अनुकूल हो वही सही। मंदिर में जो विग्रह होते हैं और घर में जो विग्रह होते हैं, वो उनके लिए जो अपेक्षित जो स्टैंडर्ड है, जो मापदंड है, वो अलग अलग है। घर में विग्रहों की सेवा के लिए थोड़ी छूट दी जाती है, फिर भी जितना हो सके हमें पालन करना चाहिए यथाशक्ति करने के लिए। तो अपने परिस्थिति को आप समझ लीजिए कि आप कितना कर पाएंगे, आपकी साधना सत्संग आने के लिए मंदिर में सेवा करने के लिए इसका क्या परिणाम होगा, और फिर जितना आप दोनों के लिए अनुकूल हो बड़े आराम से बैठ के चर्चा करके तय कर लीजिए। जो पति और पत्नी के बीच में अंतर है वो कैसे कम किया जा सकता है, ताकि पत्नी को शक्ति प्रदान की जा सकती है, किस चीज के लिए कहा नहीं है। पत्नी को प्रदान किया जा सकता है चाहे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इत्यादि। हाँ, पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी के लिए भी ऐसे एक अनुकूल वातावरण बनाए घर में और सब जगह कि पत्नी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए, पत्नी को भी उत्साह मिल जाए, अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए। तो पति के का भी एक कर्तव्य होता है। यदि पत्नी मंदिर में कार्यक्रम में आना चाहती है सत्संग में समय समय पर, और पति को बिल्कुल रुचि नहीं है इसमें, वो आना नहीं चाहते हैं, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? तो सोच विचार करके देखना चाहिए कि यदि पति विरोध नहीं कर रहे हैं, भले वो नहीं आना चाहते हैं, यदि वो पत्नी को कहते हैं हाँ तुम जाओ मुझे कोई विरोध नहीं है, तो फिर ठीक है। तो फिर भी ऐसे देखना चाहिए कि घर के काम हैं और मंदिर की सेवाएं हैं, दोनों का संतुलन हो। कहीं ऐसा न हो कि हम मंदिर में इतना आए कि घर के जो काम हैं उनमें हमारी लापरवाही हो जाए, फिर विरोध होगा। और यदि विरोध है पति का पहले से, तो सोच समझ के थोड़ा करना चाहिए। हो सकता है कि हम ज़्यादा नहीं आए, भले कम आए, लेकिन घर में शांति बनाए रखें, ये अच्छा है, ताकि दीर्घ काल में यही अच्छा होगा। से बताया जाता है कि भगवान के शरण में जाना ये तो अच्छा होता है, और गुरु के बात को भी मानना सही अच्छा होता है, परंतु पति के बातों को मानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसके ये हमारे काउंसलर होते हैं, उनकी भी बात मानना मुश्किल होता है, तो क्या करना चाहिए? ये तो दोनों तरफ है, बस हमें सोच समझ के चलना चाहिए। हमें देखना है कि आखिर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, इसलिए दोनों के बीच में समझदारी से काम होना चाहिए, हमेशा परिपक्वता से होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देते हुए दोनों को चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि पति केवल अपना अधिकार जमाए कि मेरी बात माननी चाहिए और पति की भावनाओं को ख्याल में नहीं रखे, ऐसे भी ठीक नहीं होगा। तो पत्नी का भी ख्याल रखना चाहिए, पत्नी की जो इच्छाएं हैं, जो उद्देश्य हैं, भक्ति करने की जो भावनाएं हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। तो और पत्नी को भी ध्यान में रखना है कि पति की भावनाएं कैसी, ऐसे करेंगे तो बड़े आराम से जीवन चल सकता है भक्ति में। तो जब हम देखते हैं कि जो कोई किसी पद में है भक्तों के समाज में, चाहे वो छोटा भी पद क्यों न हो, लेकिन वो सेवाओं में ज़्यादा शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से सारे व्यवस्थापन को देख रहे हैं, तो हम उनका अनुगमन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। नहीं, ऐसे कोई कारण नहीं होना चाहिए, किसी न किसी को तो ऐसे ऊपर ऊपर से व्यवस्था तो देखनी चाहिए ना। ऐसे यदि कोई नहीं देखेगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें अपने मन में विघ्न नहीं लाने चाहिए, ये सब हमारे मन के खेल हैं, सब मन हमें परेशान करते रहता है, इसलिए ज़्यादा इन बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए बड़े प्रेम से, चाहे घर में हो, भक्तों के समाज में हो, हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी समय हो गया अभी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।